युग ने
जाग उठी भारत की नारियां शिव से शक्ति
वंदे मातरम करे जगत
श्रद्धा भाव समर्पण
दृष्टि परिवर्तन नारी को नहीं नारित्व को देने एक वैचारिक क्रांति।
नमस्कार, मेरा नाम है अमन यतन वर्मा, मैं इस प्रोग्राम का सूत्रधार हूँ। आज यहाँ ब्रह्मा कुमारी के गॉडलीवुड स्टूडियोज में हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका स्नेह और शक्ति का एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी शीलू दीदी जी, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। दीदी, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे शो में, आप आई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है। पहले देखते हैं स्नेह और शक्ति, ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म।
एक बार एक गांव में एक बच्चा चोरी करके भाग रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। उस बच्चे के माता पिता बहुत गरीब थे, उसका इलाज नहीं करवा सकते थे। तभी उस गांव में दूसरे गांव से एक परोपकारी सेठ ने मुलाकात ली। गांव की पंचायत ने निर्णय लिया कि सेठ के द्वारा उस बच्चे का इलाज करवाया जाए, और ऐसा ही हुआ। बच्चे की एक टांग टूट गई थी, उसे ऑपरेट करके आर्टिफिशियल पांव को लगा दिया गया। माँ ने उसकी बहुत स्नेह से पालना की, लेकिन उसे यह शिक्षा नहीं दी कि उसे चोरी नहीं करनी थी। कहते हैं ना, लव इज ब्लाइंड। बच्चे के स्नेह में माँ को उसकी गलती नहीं दिखाई दी, सिर्फ स्नेह देती रही। साल बीतते गए, समय बदलता गया। एक दिन वही सेठ फिर से उस गांव में आया जहां उसने बच्चे का इलाज करवाया था। उसने उस बच्चे की खबर ली तो पता है क्या उत्तर मिला? वह बच्चा जेल में है। सेठ उसकी माँ से जाकर मिला और कहा, हमने उसे टांग तो दी जो वह चल सके, पर आपने वो संस्कार नहीं दिए जिससे वो जीवन में आगे चल सके। कितना जरूरी है स्नेह के साथ शक्ति का संतुलन, खास करके बच्चों में संस्कार डालने के लिए। और यह सर्वोत्तम कार्य और किसी का नहीं, एक नारी का ही तो है।
हमने देखा कि बच्चों की पालना में माँ का स्नेह और शक्ति का रूप, जिसका संतुलन कितना जरूरी है। कोई भी बात अति ठीक नहीं, ना ही अति स्नेह और ना ही अति शक्ति। दीदी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
मुझे एक किस्सा याद आ रहा है एक परिवार का। एक महिला ने अपने परिवार को सब कुछ दिया, इतना स्नेह दिया, इतना स्नेह दिया, लेकिन अंत में उसने पाया कि आखिर मुझे क्या मिला, तो सब कुछ दिया ही दिया लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। और उसका दुख और भी तब बढ़ गया जब बच्चों ने कहा कि आपने मेरे लिए किया ही क्या, ना सब कुछ करने के बावजूद भी उसको ये सुनना पड़ा अपने परिवार से, अपने बच्चों से। तो देखिए, ये है स्नेह और शक्ति का संतुलन नहीं बनाए रखा, इसका परिणाम। अति स्नेह देना ही तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्नेह के साथ साथ शक्ति भी बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को हम सिखाएं, समझाएं, स्नेह तो दे जरूर, लेकिन अवश्य उनको अच्छे मार्ग पर चलाएं। तो ये माँ का बहुत बड़ा फर्ज बन जाता है कि स्नेह देने के साथ साथ उसको ऐसी शिक्षा दे, उसको ऐसा समझाएं ताकि वो बच्चा बड़ा होकर के इतना लायक बन सके। तो जो माँ उसे सिखाएगी वही बच्चा बड़ा होकर के अपनाएगा और वही समाज को दिखाएगा।
क्या बात है, बहुत खूब। आजकल की भागदौड़ में स्नेह और शक्ति का संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। क्या कारण है इस बदलाव और कैसे होंगे इन समस्याओं का समाधान, जानेंगे हमारी एक खास मेहमान से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
अगला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, तेरी चमड़ी का सौदा होता है, तुम वस्तु बन गई हो।
मुझे शक्ति दो,
कमजोर बताना बंद करो, ये फूल नहीं चिंगारी है, इसे सताना बंद करो, सबला भारत की नारी है। धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया, हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना देख उसमें आत्मदर्शन नारीत्व दर्शन करें। देखना ना भूलिएगा विनर ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट नेशनल अवार्ड नारीत्व दर्शन। आओ करें दृष्टि परिवर्तन, नारी को नहीं नारीत्व को देने को, एक वैचारिक क्रांति।
नमस्कार, ये सच है कि नारी के कई रूप हैं। तहे दिल से स्वागत है इसमें और शक्ति का एक रूप किरण चोपड़ा जी का, जो पंजाब केसरी पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर है। अपना जीवन समाज सेवा में समर्पित करने वाली किरण चोपड़ा जी एक असाधारण महिला है, जिन्हें समाज सेवा में उनके अमूल्य योगदान के लिए कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। आज जहाँ समाज पैसे के पीछे भागते रिश्तों को भुलाता जा रहा है, वहीं किरण जी उन लोगों के लिए उम्मीद की रोशनी लेकर आई हैं अपनी संस्था वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के रूप में, जिसकी फाउंडर और डायरेक्टर हैं किरण जी खुद। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा किरण चोपड़ा जी का। किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल के हमारे शो पे आई अपनी कुछ बातें हमें बताने के लिए। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कुछ अनुभव।
मेरा 7 साल का बेटा है और मैं मेरे बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, और उसके बारे में बहुत सारे मतलब कंप्लेंट्स करते हैं उसके दोस्त हो या क्लास टीचर है या आस पड़ोस के, कि आपके बेटे की ये गलती है वो गलती है, लेकिन मैं उसे सुन नहीं पाती।
मैं सीमा बुडेकर एक स्कूल संचालिका हूँ और बच्चों का भविष्य बनाने के लिए मैं आत्मिक प्यार से उन्हें सिखाती हूँ और उनका अच्छे से अच्छा भविष्य बने, इसलिए मैं कभी कभी शक्ति का प्रयोग करती हूँ।
मेरा नाम प्रमोदनी है, मेरे पति तंबाकू का बहुत सहन करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनकी इस बुरी आदत का कैसा नाश कर सकूँ। अगर गुस्सा करती है तो और भी बिगड़ जाते हैं, स्नेह से बोलने से तो सुनते ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ।
तो यहाँ समस्या अपने स्नेह और शक्ति में संतुलन न कर पाने की है। पहला सवाल आपसे दीदी, आप इन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे?
हम तो ये सलाह देना चाहेंगे कि दोनों का संतुलन बनाना जरूरी है। जैसे पहली वाली बहन ने कहा कि बच्चे की कमजोरी में सुन नहीं सकती,
नहीं सकते।
अब यहाँ माँ को समझदार बनना चाहिए कि वो अपने बच्चे की कमजोरी भी परखे और परख करके उसको उसी अनुसार उसको शिक्षा दे कि वो बच्चा कैसे परिवर्तित हो। तो स्नेह देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम कहते हैं गिव लव लॉफुली एंड यूज लॉ लवफुली। तो लव को लॉ के साथ दो और लॉ को लव के साथ प्रयोग करो, एक ये बहुत बड़ी चीज है। बच्चों को भी अगर हम डांटते ही रहेंगे तो बच्चे तो दीठ बन जाएंगे, वो तो मानेंगे नहीं। तो दीठ भी नहीं बनाना है और ये भी नहीं कि हम गुस्सा ही करते रहे डांटते ही रहें, पर वो प्यार भी हम उन्हें दें और उनको शिक्षा भी दें। तो शिक्षा भी प्यार से दे और प्यार में शिक्षा भरी हुई हो, ये दोनों का बैलेंस हमें बना के रखना होगा।
लव को लॉफुली और लो को लवफुली, और वह भी पहले स्वयं के साथ। राइज इन लव एंड नॉट फॉल इन लव। किरण जी, आप क्या कहेंगे?
जैसा कि अभी दीदी ने भी बताया और मैं भी कहूंगी कि जो लव है वो लॉफुली ही होना चाहिए। कि हम अक्सर देखते हैं कि माएं जो है, हर माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, आपकी माँ भी करती होगी, मेरी माँ भी करती है,
और माँ का जो ममता होती है, जो मोह होता है, वो एक किस्म का अंधा होता है। वो आज जरूरत है कि माँ का जो मोह है, ममता है, उसको लॉफुली देखा जाए। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे बचपन में छोटी छोटी गलती करते हैं, हमारे बच्चे भी करते हैं, आपने भी की होगी, की है ना आप?
बिल्कुल बिल्कुल। तो सब माँ तो मार मार के मुझे सीधा,
हाँ, तो मेरे
नहीं सुधरा।
हाँ, नहीं आप सुधरे लगते हो, माँ के ही संस्कार हैं जो आज यहाँ बैठे हुए हैं। और मेरे भी, मैं बता रही हूँ, ट्विंस है। ट्विंस हमेशा नॉटी होते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट होती है। तो स्कूल में कोई शरारत करते हैं, उनको सबसे पहले मेरा डर होता है कि माँ आएगी तो हमारी सपोर्ट नहीं करेगी, टीचर के साथ मिल जाएगी। और मुझे आके नाराज भी होते हैं कि आप कैसी मम्मी हो, सबकी मम्मी तो आके लड़ती है कि मेरा बच्चा ठीक है, और आप कह देते हो नहीं पहले मेरे बच्चे की गलती हो। तो ये हमें बहुत जरूरी है, छोटे होते से ही बच्चा अगर कोई गलती करता है तो उसको चेक करना चाहिए।
चलिए अब हम मिलेंगे कुछ और महिलाओं से, आइए देखते हैं उन्हें और उनकी कहानी सुनिए।
मेरा नाम सरोजनी है। मुझे मंदिर में देवी के जाने के टाइम स्नेहा और शक्ति की अनुभूति होती है, उससे मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है।
मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ, हमारा एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। कई बार हमारे यहाँ ऐसे कस्टमर आ जाते हैं वो जिनसे हमें काफी परेशानी होती है, वो हमारे स्टाफ को रिश्वत देकर नॉनवेज मंगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने हमारा स्टाफ को स्नेह से हमारे नियम समझाया हुआ है, इसीलिए आज हमारे स्टाफ भी प्यार से बातें करते हुए ऐसे कस्टमर से रिश्वत लेने से इनकार कर देते हैं।
हमने देखा एक सफल और संतुलित व्यक्तित्व की पहचान। किरण जी, तो मैं आपसे पूछूंगा, क्या विचार है आपका इनके बारे में?
तो अभी आपने महिला देखी, वो एक जिंदगी की आज की सच्चाई बता रही थी। ये इतनी करप्शन है, एक छोटे से वो रेस्टोरेंट में ये हाल है।
सही बात।
तो आज
सोचिए आगे क्या
होगा? आगे क्या होगा और आज क्या हो रहा है। तो हमें चाहिए, इस बात में भी मैं कहूँगी कि नारी अपना बहुत अच्छा रोल निभा सकती है। कहीं भी करप्शन है, कहीं भी गलत काम है, तो उसको बैलेंस करने में भी नारी का बहुत हाथ हो सकता है। अगर आप माँ आपका कोई भी ब्राइब लेके या कोई बात सुन के बात नहीं मानती तो आपकी आदत आगे डेवलप होती है। फिर आप समाज में अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वही बैक ऑफ माइंड आपके रहेगा, माँ ऐसे कहती थी, माँ ऐसे किया करती थी, तो मुझे ये काम नहीं करना। और वो समाज अच्छा बनेगा तो देश अच्छा बनेगा। अगर छोटा सा रेस्टोरेंट अच्छा, इसमें नॉनवेज के लिए ब्राइब नहीं दी जाएगी तो आप बड़े होटल में जाएंगे तो आपको भी नॉनवेज नहीं मिलेगा।
दीदी से दीदी, इनके बारे में आप क्या कहेंगे?
अब तो यही कहेंगे कि बात तो बहुत सही है, क्योंकि आज दुनिया में इतना भ्रष्टाचार है, व्यभिचार है, दुराचार है, अत्याचार है, अनाचार है,
और आचार नहीं
अचार, ये आचार
आचार
आचार माना आचरण। तो वो आचरण हमने देखा है, ये बचपन से सिखाया जाता है, जो बच्चे को सिखाया जाता है वो सारा जीवन उसका साथी बनता है। इसीलिए माँ के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। परंतु मैं उसके लिए ये भी कहूँगी कि माँ पहले अपने अंदर में खुद के प्रति भी संतुलन बनाए, यानी दूसरों को तो स्नेह और शक्ति से चलाए लेकिन खुद के प्रति भी रिस्पेक्ट। कई बार हम देखते हैं माताओं को अपने प्रति रिस्पेक्ट नहीं, वो खुद के गुणों को भी नहीं देख पाती, इसीलिए खुद के गुणों को देखे। और ये भी सही है कि इतनी जीत भी न बन जाए, इतनी वो स्टबन भी न बन जाए कि वो कुछ मानने को तैयार भी न हो। अवश्य हमें शक्ति रूप बनना है, हमें दुर्गा अम्बा की तरह बनना है, लेकिन साथ साथ शीतला देवी भी बनना है, अपने आप को भी बदलना होता है। कई बार प्यार से हम दूसरे को बदल सकते हैं, तो अपने आप को बदलेंगे तो दूसरे को भी हम बदल सकते हैं, है ना। ये संतुलन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, तब हम दूसरों को ये संतुलन दिखा सकेंगे, अनुभव करा सकेंगे।
सही, बहुत बहुत बढ़िया बात। तो समय निकालिए अपने लिए और ये सोचिए कि कहाँ आपको स्नेह और कहाँ आपको अपनी शक्तियों का उपयोग करना है। अपने व्यक्तित्व में स्नेह और शक्ति का सामंजस्य बैठाती कुछ महिलाओं से हम मिलेंगे, लेकिन एक छोटे से
ब्रह्मा कुमारी से प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं।
नारीत्व का दर्शन कराया था कि नारीत्व शक्ति के बारे में बताएं, तो वो बेटा अपनी बहन के साथ फर्क नहीं करेगा, वो भाई अपनी बहन के साथ फर्क नहीं करेगा, उसको बचपन से ही उसको उस देवी के रूप में।
आप भी देखिए
नारीत्व दर्शन, नारी को नहीं नारीत्व को देखिए, एक वैचारिक क्रांति।
नमस्कार। ब्रेक पर जाने से पहले हमने जाना कि कब नारी को फूल बनना है और कब चिंगारी। हमारे बीच आज कुछ ऐसी ही बहनें बैठी हुई हैं जिन्होंने अध्यात्म को अपने जीवन का अभिन्न भाग बनाया और अपने व्यक्तित्व को संतुलित किया। चलिए सुनते हैं खुद उन्हीं की जबानी।
मैं बचपन में बहुत सारी गलतियां करती थी, तो मेरी मम्मी मुझे डांटना या मारना नहीं करते थे, हमेशा मुझे प्यार से समझाते थे। इसी प्यार के वजह से और उनकी शिक्षा के वजह से प्यार और शक्ति की बैलेंस करने की ताकत मेरे अंदर आई, और मम्मी ने मुझे यही सिखाया है और लाइफ में भी आगे मेरे अंदर ये रखना चाहती हूँ।
क्या मैं आपकी मम्मी के साथ जरा चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बहुत पीटा करती थी। हमें बड़ी खुशी है कि आपकी मम्मी ने बड़े प्यार से आपको सिखाया समझाया। आपके अलावा कोई और कुछ कहना चाहेंगे?
मेरा नाम सुधा है।
सुधा,
मैं एक गृहिणी हूँ
जी।
मेरे सरल स्वभाव के कारण मेरे नौकरानी बहुत छुट्टियाँ करती है, इससे मेरे को बहुत परेशानी होती है। एक दिन मैंने बहुत डांटा उसे, दूसरे दिन वो डर गई और रोज आने लगी, लेकिन ये स्वभाव उसका थोड़े ही दिन चला, गुस्से का प्रभाव बहुत थोड़े समय रहा, फिर उसकी वही आदत वही छुट्टियाँ, मैं परेशान हो गई। एक दिन मैं टीवी पर पीस ऑफ माइंड चैनल देख रही थी, तो ब्रह्मा कुमारी दीदी ने समझाया कि हमें स्नेह और शक्ति का संतुलन रखना चाहिए, हर समय डांटना नहीं चाहिए, शुभ भावना भी रखना चाहिए। दूसरे दिन मैंने ऐसे ही किया, अपनी नौकरानी के साथ बहुत प्यार से बात की और उससे शुभ भावना की किरणें दी, और उसके बाद से वो रोज आने लगी, कभी उसने छुट्टी नहीं ली।
मैं खुशी है कि आपकी नौकरानी आपके साथ काम कर रही है, वरना आजकल नौकरानी मिलना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सही है। कई महिलाओं के लिए, खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए, स्नेह और शक्ति का संतुलन बनाए रखना एक तरह से चुनौती है। इस पर क्या प्रकाश डालेंगे आप, किरण जी बताइए मुझे।
तो ये एज है, इसमें क्या है कि हेल्थ आपकी जवाब दे रही होती है और सोसाइटी की, समाज की और यहाँ तक कि आपके बच्चों की
जी।
आपकी तरफ जो नजरिया होता है, नजरें होती हैं, वो बदल रही
बदल
रही है। स्पेशली अगर आप सर्विस क्लास से हो तो आपको मालूम है कुर्सी को सलाम होता है, जैसे ही कुर्सी गई और सबकी नजरें चेंज हो गई।
सही बात।
अगर आप बिजनेस क्लास से हो तो बच्चे कहते हैं पापा मम्मी आप आराम कीजिए, हम बिजनेस संभालते हैं
जी, जी।
और अगर आप वैसे ही हो, कोई काफी काम नहीं है, तो भी सबकी नजरें आपकी इस उम्र में चेंज होती है।
सही बात।
तो इस समय एक तो हेल्थ प्रॉब्लम होती है, एक लोनलीनेस की प्रॉब्लम होती है, अकेलापन आ जाता है, तो थोड़ा सा नेचर में चिड़चिड़ापन आता है। हम बुजुर्गों को कहते हैं कि आपके बच्चे गलत नहीं, आप भी गलत नहीं हो, आपकी हेल्थ और समय ऐसा है और तो बच्चों को काम करना है, आपको अपनी युवा पीढ़ी के साथ बैलेंस बनाना है। उसके लिए हम उनको तीन बातें कहते हैं कि आप नॉन, मॉन और कौन का सिद्धांत अपनाएं।
नॉन, मॉन, कौन?
हाँ, नॉन मीन्स अप्रिशिएट कीजिए और मॉन आप ज्यादा से ज्यादा चुप रहो, आपकी सलाह मानी जाए, मांगी जाए तब दो। और कौन मीन्स इंटरफेरेंस कम कीजिए, आज कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहता, दो साल के बच्चे को भी कह रहा नो तो आगे से खत्म करता है, करता है ना। तो ऐसे आज कोई नहीं चाहता, तो बड़े बहुरानियाँ, बेटे बेटियाँ कैसे, कहाँ इंटरफेरेंस, तो आप ज्यादा से ज्यादा मत पूछिए कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये पूछ सकते हो बेटा कब आ रहे हो, खाना घर खाओगे, स्टाइल चेंज करना पड़ेगा समय के साथ, तो बैलेंस होगा। और बच्चों को भी हम बताते हैं उसमें कि आज ये जो बुजुर्गों का आज है वो आपका आने वाला कल कल, जो आप बोओगे वही काटोगे, जो आप जैसा आप व्यवहार करोगे आपके बच्चे देख रहे हैं आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, और जो उनका आज है वो आपका आने वाला कल है, और इस तरह आपको बैलेंस बनाना है। और जरूरत है बुजुर्गों को इस उम्र में बहुत बैलेंस बनाने की।
दीदी आप क्या बताना चाहेंगी, हमारी जो बहनें यहाँ पे हैं और वहाँ पे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगी आज की जो हमारी चर्चा है उसके बारे में, खासकर माँ और बच्चों के बीच के संबंध में इन दोनों गुणों के संतुलन को लेकर।
मैं तो यही कहूँगी कि समय ऐसा आ गया है कि सबको रिस्पेक्ट दो, पहले कहा करते थे कि बच्चों को प्यार दो, बड़ों को सम्मान दो, आजकल तो सभी सम्मान चाहते हैं, छोटे भी सम्मान चाहते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी जैसे बहन जी ने इतनी अच्छी बातें बताई बुजुर्गों की, तो आजकल तो बड़े कहते, बुजुर्ग कहते बच्चे, मेरे मुझे जरा पूछो तो सही, तो बड़े बुजुर्ग प्यार चाहते हैं और छोटे सम्मान चाहते हैं, इट इज बिकम अपोजिट। तो आज से दूसरी बात बहन जी ने बहुत अच्छी कही कि हम उनको कैसे संबोधन भी करें, हम ऐसे नहीं कहेंगे बेटा ये मत करो, बेटा ये मत करो, या बेटा ये तुमको करना है, बेटा ये करोगे, वो पूछना भी रिस्पेक्ट से है, ऑर्डर नहीं करना है, क्योंकि अगर हम कहेंगे ये करना है, कहेगा नहीं करूँगा, आजकल तो बच्चे ऐसे भी हैं, तो इसीलिए नहीं करूँगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप उनको रिस्पेक्ट से पूछते हो बेटा करोगे, अब वो नहीं कह रहा है तो आप फोर्स भी नहीं कर सकते हो, तो इसको प्यार से कहा और रिस्पेक्ट से कहा तो अवश्य उसको स्वीकार करें। तो हमने देखा है कि स्नेह और शक्ति दोनों का एक सुंदर हम समन्वय बना के रख सकते हैं, परंतु ये भी नहीं कि जिस समय स्नेह देना उस समय शक्ति यूज करें, जिस समय शक्ति यूज करनी उस समय स्नेह यूज करें, फ्लेक्सिबल भी रहें और हम डिटरमिन भी रहें, दृढ़ भी रहें, परंतु दृढ़ता कहाँ यूज करनी है और फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ यूज करनी है, ये थोड़ी परख शक्ति हमारे अंदर अगर हो तो हम बहुत कुछ सुंदर व्यवहार समाज के साथ, परिवार के साथ, मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ कर सकते।
ध्यान का सहारा और रिश्तों का महत्व आपको ताकत देता है ये तय करने के लिए कि किस रूप की आवश्यकता आपको कहाँ अधिक है। अतः यदि स्वयं अपने साथ थोड़ा निर्भय होकर अपनी आदतों में अनुशासन और नियमितता को स्थान देना शुरू कर दें, तो केवल वातावरण के प्रभाव से ये संस्कार सारे परिवार के सभी छोटे बड़ों में अंकुरित होते और विकसित होते देर नहीं लगा सकता। यदि एक नारी तर जाए तो वो 21 कुल को तारने वाली बन जाती। प्रेम हो तुम, स्नेह हो, वात्सल्य हो दुलार, मीठी सी झड़की या शक्तियों में लिपटी फटकार भी। हे नारी तुम अपरंपार। किरण जी और दीदी आप दोनों यहाँ पे आए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी कमाल की बातें आज फिर आपसे सीखी हमने, और हमारे ऑडियंस के जितने लोग हैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आके आपने अपने विचार हमें बताए, प्रकट किए। आप सब लोगों को कैसा लगा हमारा आज का ये खास कार्यक्रम, हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। हमारा पता और ईमेल आईडी क्या? होगी मुलाकात आपसे और जानेंगे नारी के स्वास्थ्य के बारे में हमारी इसी खास प्रोग्राम में जिसका नाम है नारी प्रदर्शन। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ओम शांति, वंदे मातरम।
संस्कृति की तू रक्षक है, संतति की संरक्षक है।
ना भूलिएगा हमारा अगला एपिसोड, हमारे साथ बने रहिएगा।
A gift of God. But what when God Himself be your best friend? Let's make a true connection with God. Let's learn Raj Yoga.
हर मुश्किल का हल होगा, हाँ हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा।
हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा।
अरे हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। कल होगा हो, कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। आज नहीं तो कल होगा। बन जाए तेरे बिगड़े काम,
बन जाए तेरे बिगड़े
बाबा का लोग दामन थाम बन जाए तेरे बिगड़े काम, ममता का आंचल होगा हो, ममता का आंचल होगा आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा।
आज की विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने दुर्भाग्य का दोषारोपण दूसरे पर करता है।
शक्ति मांगते रहे या माफी मांगते रहे, अब बाबा को सच्चा साथी बनाया तो पता है कि बाबा से वो मिल रहा है, मांगने की जरूरत ही नहीं है, वो तो मेरे साथ है, दाता मेरे साथ है, चाबी मेरे पास है, बस सिर्फ वो स्मृति रहे मैं किसके साथ हूं। वह अकेलापन लगता है भक्ति मार्ग में, इसलिए चिल्लाना पड़ता है, हे भगवान, यहाँ तो साथ है। साथ को इशारा, साथ वाले को इशारा देना ही बहुत है, जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। कई वो एक मिसाल देते हैं ना कि इंसान जब गुस्से में होता है ना, तो जिससे गुस्सा होता है दोनों गुस्से वाले आपस में जोर जोर से बात करते हैं, जोर जोर से। अभी जोर जोर से बात क्यों करते हो, गुस्सा जोर से व्यक्त करना होता है, धीरे से तो गुस्सा नहीं व्यक्त होता है ना, पर जोर जोर से इतना बात करने की जरूरत क्या है, वो बहरे थोड़ी है, बहरे होते तो उनको जोर से बोलना पड़ता है ताकि सुने, क्योंकि बहरा है, कान में जाकर के बोलना पड़ता है जोर से। परंतु गुस्से में फिर भी इतना नजदीक होते भी जोर जोर से क्यों बोलते हैं, क्योंकि भले शरीर से नजदीक है पर मन से बहुत दूर है, और मन से बहुत दूर है इसलिए जोर जोर से बोलना पड़ता है गुस्सा करके। और जो मन से नजदीक है ना, उनके लिए इशारा ही बहुत है, बस इशारा एक दो का समझ जाते हैं, बस मुख से कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, वो एक दो का इशारा ही समझ लेते हैं, क्योंकि वो उनका वही फ्रीक्वेंसी है, वही उनका वेवलेंथ चल रहा है, समानता की स्थिति है। जो क्रोध कर रहे हैं वो एक दो के अंतर में बहुत है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है, और फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है तो जरूर लड़ेंगे आपस में, विचार मिलते नहीं है। दुनिया में हम देखते हैं प्रकृति के अंदर जो अपोजिट पोल्स है वो ही आपस में आकर्षित होते हैं, जो समान पोल्स है जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल उत्तर और उत्तर, वो आपस में टकराएंगे, उत्तर और दक्षिण आपस में मिलेंगे, ये प्रकृति की शक्ति है। पर आध्यात्मिक शक्ति जो समानता है वह आकर्षण है, और जहां समानता है वहां आकर्षण है, तो उस आकर्षण के आधार से इशारा ही बहुत है, क्योंकि एक दो के बहुत समीप है। तो बाबा को पुकारने की भी जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है, मुख से कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। जैसे माँ का बच्चे से प्यार है तो बच्चा दूध मांगे तभी माँ देगी नहीं, सच्चा प्यार माँ का होगा तो माँ को पता है कि बच्चे को दूध कब देना है, वो अपने आप जानती है और देगी, क्यों नहीं देगी, प्यार है बच्चे से। तो बाबा भी हम बच्चों से कितना प्यार करते, लेकिन उसकी कसौटी है कि हम कितना बाबा को प्यार से याद करते हैं। वो सत्य है, वो सुंदर है, वो दाता है, वो कल्याणकारी है, शिवम है। यही अंदर की जो मेरी धारणा है, उस धारणा के आधार से बाबा से सच्ची प्रीत बुद्धि बन जाती है, और यही प्रीत कदम कदम पर हमको विजयी बनाएगी। ये निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। इसी लगन में मगन रहो, इसी निश्चय में मगन रहो, तो विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए बाबा को याद करेंगे उसी निश्चय के साथ।
प्यारे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, एक तू ही तो है बस हमारा, तुझसे रोशन है सबका सितारा, एक तू ही तो बस है किनारा। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा।
शांति की कल्पना करते हैं या हम सोचते हैं कि शांति का मीनिंग क्या है हमारे लिए, उसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, तो हम हमारे मन के आंखों के सामने कई सारे चित्र आ जाते हैं। जैसे मेरे लिए बहुत सुंदर सा एक बगीचा है, वहाँ पर फूल हैं, तितलियाँ हैं, चिड़िया हैं, बच्चे हैं, खेल रहे हैं, और सभी लोग जो हैं वो प्रेम की भावना से एक दूसरे की तरफ बात कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। शांति मेरे लिए इस मायने में बहुत जरूरी है कि आज के जीवन की भागदौड़ में हम जिस तरह से अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं, अपने विचारों की तरफ ध्यान देना बहुत ही कम होता चला जा रहा है, उसमें हम सोचते हैं कि दुनिया में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो बंद हो जाए तो शांति मिलेगी, या अगर हमारे घर गृहस्थ जीवन में कुछ झगड़े चल रहे हैं या किसी के बीच में बहस चल रही है वो बंद हो जाए तो ये दुनिया शांत हो जाएगी। लेकिन क्या यही सब चीजों से हमें शांति मिल सकती है? मेरा जीवन का अनुभव कहता है कि जब तक हम अपने मन को शांत और अपने मन को स्थिर ना करें, हमें अगर एक ऐसे माहौल में भी बिठा दिया जाए जहां पर कि वाकई कोई आवाज ना हो रही हो बाहरी तौर पर, लेकिन अगर हमारे मन की आवाज इतनी जोर से बोल रही होती है तब भी हमारे मन को शांति महसूस नहीं हो पाती। हम उसे अनुभव कर नहीं कर पाते हैं और हम उसको रिसीव भी नहीं कर पाते हैं। हम सुंदर से सुंदर माहौल में बैठते हुए भी हमारा मन बहुत विचलित, क्योंकि हमारे ध्यान, हमारे थॉट्स जो हैं वो इधर उधर भाग रहे होते हैं। ब्रह्म कुमारी की बहनों और भाइयों के बीच में रहकर और उनके साथ उठकर समझकर मेरे मन में भी बहुत सारी प्रेम और बहुत सारी शांति की जो भावनाएं उठती हैं वो मैं आपके साथ जरूर बांटना चाहूंगी। उनमें सबसे श्रेष्ठ जो एक संकल्प हम सभी को लेना चाहिए, और आज मैं आपके सामने शुरुआत करती हूँ ये संकल्प लेकर कि हम अपने मन को शांत करें, ताकि हमारी तरफ से जितना हम योगदान दे सकते हैं जीवन में अलग अलग लोगों के आसपास बैठकर और इस पूरी दुनिया में, जो एक शांति की भावना से हम एक दूसरे से अगर पेश आए तो वाकई हम उसको कह सकते हैं कि एक ह्यूमैनिटेरियन पीसफुल हमने एक एफर्ट लेकर के और जो है जिंदगी में, दुनिया में एक डिफरेंस बनाने की कोशिश की है।